ولا قوة إلا بالعلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم عاد الله من يومنا هذا لا لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله في كتاب حكيم بسم الله الرحمن الرحيم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ثلث فإن كان له إخوة فلأمه سدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. مؤمنين، یہ سورة نساء کا سلسلہ جاری ہے. یہ جو آیت پڑھنے کا شرف میں نے حاصل کرا ہے، 11ویں آیت ہے سورہ نساء کی، لمبی آیت ہے، انشاءاللہ ٹکڑوں ٹکڑوں کریں گے. ان آیتوں میں خداوند کریم نے حق داروں کا حق بتایا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. خدا تم کو اپنی اولاد کے بارے میں نصیحت کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے. یہ اللہ کی نصیحت ہے کہ اچھا، اس کے اندر کیا ہے کہ ان آیتوں کے اندر جو حصے بتائے گئے ہیں، پہلے لڑکیوں کے بتائے گئے ہیں، اس سے لڑکوں کے حصے بتائے گئے ہیں. کیونکہ اس زمانے کے اندر، زمانے جاہلیت میں، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں عزت دکھاتا ہوں، تو کہا کہ میں لڑکیوں کا حصہ بتاؤں گا، اس سے لڑکوں کا حصہ میں ناپوں گا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اولاد کہا ہے اس میں اللہ نے، اولادکم. میزان نے کہا کہ اولاد کیوں کہا ہے؟ ابنا کہہ دیتا، ابنا میں بیٹے اور پوتے اور آتے ہیں لائن سے، اولاد میں صرف بیٹا آتا ہے، امیجیٹ چائلڈ. تو اولادکم کہا ہے، اولادکم جو امیجیٹ چائلڈ. تو ترکے میں کیا ہوتا ہے کہ اولاد سے حصہ بٹتا ہے. کہ اگر ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، اور بیٹا بیٹی فوت ہو گئے، اب بیٹے کے اگر بیٹی ہے یا بیٹی کے اگر بیٹا ہے، تو پوتا اور پوتی میں باپ یا ماں کی وجہ سے حصہ ملے گا. کہ جو باپ کو حصہ ملنا تھا وہ بیٹے کو ملے گا یا بیٹی کو ملے گا. جو ماں کو ملنا تھا، وہ ماں فوت ہو گئی، تو اس کی جو بیٹی کو یا اس کے بیٹے کو ماں کے حساب سے حصہ ملے گا. تو ترکے میں حصہ اولاد کی وجہ سے ملتا ہے. مطلب کہ اگر پوتا اور پوتی ہیں، یا تو پوتا اور پوتی کو باپ یا ماں کے حساب سے ملے گا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ خدا تمہیں نصیحت کرتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ناپنا شروع کرا لڑکیوں سے، کہ دو لڑکیوں کے برابر ہے. فَإِن كُنَّا نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اور اگر دو سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو ان کا دو تہائی حصہ ہے. ترکے میں سے دو سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو ان کا ترکے میں دو تہائی حصہ ہے. اس میں کہا دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں. تو اگر اپن اس طرح لیں کہ एक 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 हिस्सा लें, एक को अपन तीन हिस्सों में बांटें, एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई। तो अगर हिस्सा बांटना शुरू करा तो एक तिहाई तो लड़की को मिला और दो तिहाई लड़के को मिल गया, दुगुना हो गया ना। बात यही थी ना, एक तिहाई लड़की को मिला, दो तिहाई लड़के को मिला। अब इसमें क्या कहा, इन कुन्ना निसा फोकस न ने, अगर दो से ज्यादा लड़कियां हैं तो उनका तरके में दो तिहाई हिस्सा है। दो निकालना है, दो नहीं कहा, लेकिन दो समझने का जरूर है। दो दो क्या होता है, दो क्या हुआ था, आयत क्या थी कि दो लड़कियों बराबर एक लड़का हिस्सा होता है। तो एक लड़का हिस्सा कितना था, दो तिहाई था ना। तो अब दो लड़कियों का हिस्सा कितना होगा, दो तिहाई होगा ना। तो अल्लाह को कहने की जरूरत नहीं थी कि दो या दो से ज्यादा, दो को तो समझाई दिया अल्लाह ने ना। तो दो से ज्यादा को भी अल्लाह ने वही समझाया, क्यों, दो तो अल्लाह पहली आयत में समझा चुका है कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों में बराबर। तो उसमें मालूम हो गया था कि एक तिहाई लड़की का था, दो तिहाई लड़के का था। तो अगर दो लड़कियां होती उनका दो तिहाई होता, तो दो तिहाई की तो बात वाज़ह अल्लाह ने कर दी थी। तो इस आयत में कहा दो से ज्यादा लड़कियां उनका भी फिर दो तिहाई हिस्सा है। इन कुन्ना निसा फोकस न तन फलाहुन्ना सुलस व इन कानत वायदा फलाहुन्ना निस्फ, और एक लड़की तो उसका तरके में आधा हिस्सा है, तरके में आधा हिस्सा है। वली अव्वे ही लिकुल्ली वली अव्वे ही वली कुल्ली वादन मिनहुमस सुदस मिम्मा तरक इन काना लहू वलद। अच्छा, धीरे से आगे बात को बढ़ाते हैं कि हर एक वालदेन का उसमें से छठा हिस्सा है तरके में से अगर उनके औलाद हो। तर्जुमा ये कि हर एक वालदेन का अगर उनकी औलाद है तो तरके में से छठा हिस्सा है। तो अगर औलाद है तो माँ का भी छठा हिस्सा है और बाप का भी छठा हिस्सा है अगर औलाद है तो। आगे क्या आया था, फैलम यकुल हो वलदू वह वरिस हो अव्वा हो फली उम्म सुलुस। जी हाँ, अब आगे मैं आयत को रोक देता हूं। और अगर उनके औलाद ना हो, फ़इल्लम यकुल हो वलदू वह वरिस हो अव्वा हो फली उम्म सुलुस, कि अगर उनके औलाद ना हो और अगर वालदेन ही वारिस हो तो माँ का उसमें एक तिहाई हिस्सा हो जाएगा। बात समझ में आ गई, अगर औलाद है तो वालदेन का छठा हिस्सा है, अगर औलाद नहीं है तो माँ का हिस्सा बढ़ जाता है, एक तिहाई हो जाता है। बात समझ में आ गई, मैं समझाना चाह रहा हूँ बात। पहले बात समझा, क्या समझाई कि दो लड़कियों बराबर लड़के का हिस्सा, अगर लड़कियाँ दो या दो से ज़्यादा हो तो उनका दो तिहाई हिस्सा है। फिर बात आगे क्या समझ में आई कि अगर औलाद है तो वालदेन का छठा हिस्सा है, अगर औलाद हो तो माँ का तीसरा हिस्सा है, औलाद ना हो तो, माफी चाहता हूँ, औलाद हो तो छठा हिस्सा दोनों का, और औलाद ना हो तो वालदा का तीसरा एक तिहाई हिस्सा है, बाकी हिस्सा बाप को जाता है, बाकी हिस्सा बाप को जाता है। अब आगे चलते हैं, इनका ना लू इखवतुन फली उम्मे ही सुदुस मिम बादी वसीती यूसी बिहा औदेन आबाओकुम व अबनाओकुम ला तदरूना अय्युहुम अकरबुलकुम मिनन अकरबुलकुम नफा फरीदतम मिनल्लाह इन्नल्लाहा काना अलीमन हकीमा। अब आगे आगे चलती है, आगे आगे चल हुई कि अगर उसके भाई है, मैयत के भाई है, अगर उसके भाई है, मैयत के भाई है तो उसकी माँ का छठा हिस्सा, और वो छठा हिस्सा होगा मैयत की वसील के वसीयत के तामील के बाद या उसके कर्ज की अदाई के बाद। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादा और बेटों पोतों में फायदे के लिहाज से तुमसे कौन करीब है, अल्लाह आगे फरमाता है। और ये खुदा क्या मुकर्रर किया हुआ हिस्सा है, और बेशक खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। अब ये आयत को आगे समझाया जाएगा। انشاءاللہ. یہ آیت کیا یہ آگے کیا ہے؟ آخری آیت ابھی سمجھانا. کیا آیت آئی کہ اگر میت کے بھائی ہے تو ماں کا چھٹا حصہ. وہ کب ہے چھٹا حصہ؟ جب اس کی قرض کی ادائیگی یا جو اس نے وصیت کی اس کی تعمیل کے بعد. اب یہ سمجھانا ہے کہ ماں کا کیا ہوتا ہے. یہ اگر میت کے بھائی ہے تو ماں کا حصہ پھر چھٹا ہو جاتا ہے, ایک تہائی کی جگہ پھر چھٹا ہو جاتا ہے, پھر نیچے گر جاتا ہے. کیوں گرتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ میت کے بھائی ہے تو اچھا بھائیوں کو تو حصہ ملے گا نہیں, کیونکہ کیا ہے کہ وہ تین جماعتیں ہوتی ہیں نا. پہلی جماعت میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی جماعت میں اولاد ہے, والدین ہیں. دوسری جماعت میں کون ہے؟ بہن بھائی ہیں اور دادا ہیں, گرانڈ پیرنٹس ہیں. اور تیسری جماعت کے اندر پھر میٹرنل انکل پیٹرنل انکل آتے ہیں. تو بھائیوں کو ملے گا نہیں, لیکن بھائی کیا کرتا ہے اگر بھائی آئے؟ اچھا بھائی بھی کون سے ہوں؟ اس کی میں حدیث سے پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو پہلے, کون سے بھائی ہیں یہ اور یہ کون سے بھائی ہیں جن کی وجہ سے حصہ کم ہوگا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, درود پڑھ دیں, اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد, کہ ماں کا ایک تہائی حصے سے جو حق کم ہوتا ہے وہ دو بیٹے ہوں. کون سے بیٹے؟ یا تو باپ کی طرف سے ہوں یا دونوں کے والدین ایک ہوں, یا چار بیٹیاں ہوں, یا تو باپ کی طرف سے ہوں یا چاروں ایک ہی والدین کے ہوں. جب یہ ہوگا تو ماں کا حصہ ایک تہائی کی بجائے ون سکس ہو جائے گا, چھٹواں حصہ ہو جائے گا, چھٹواں ہو جائے گا. لیکن اگر اولاد صرف ماں کی طرف سے ہے, اولاد صرف ماں کی طرف سے ہے, تو پھر ایسا نہیں ہوگا. اب ایسا کیوں ہوا؟ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ماں باپ بیٹھے ہوئے, اولاد نہیں ہے نا, اب ماں بھی بیٹھی باپ بھی بیٹھا ہوا, اب بھائی آ گئے. کہاں سے آئے بھائی؟ باپ کی طرف سے آئے, ہے نا. دو بھائی آئے باپ کی طرف سے, یا تو ان کا باپ وہی ہے یا دونوں کے والدین ایک ہیں, لیکن باپ کا حصہ آ رہا ہے اس پہ نا, باپ کا حصہ آ رہا ہے رائٹ. اور ایک یہ تھا کہ صرف ماں کی اولادیں بیٹھی ہوئی ہیں, تو ایک ون تھرڈ کو ون سکس کون کرے گا؟ گھٹائے گا کون ماں کے حصے کو؟ یا تو دو باپ کی طرف کے بیٹے یا چار باپ کی طرف کی بیٹیاں, یا دو ماں باپ کی طرف کے بیٹے یا چار ماں باپ کی طرف کی بیٹیاں. اس سے کیا ہوگا کہ ماں کا حصہ گھٹ گیا اور باقی حصہ باپ کو مل جائے گا, کیونکہ کیا ہے کہ باپ کی اولادیں ہیں نا اتنی, تو باپ کو زیادہ حصہ مل جائے گا. لیکن صرف ماں کی بیٹیاں تھیں, ماں کے بچے تھے, تو وہ ماں کا حق مقرر رہے گا کیونکہ ماں کی اولاد ہیں. یہ اللہ کی حکمت ہیں. درود پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. احباؤں کو, ابناؤں کو, لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع. اللہ کہتا تمہارے باپ داداؤں اور بیٹوں پوتوں میں تم کو نہیں معلوم کہ تم سے فائدے کے لحاظ سے کون قریب ہے. اللہ سبحانہ اللہ فرماتا ہے فرضیتا من اللہ, یہ خدا کی طرف سے مقرر ہے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک خدا علم والا حکمت والا ہے. ایک درود پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد و آلہ. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لہن ولد فان کان لہن ولد فلکم ربع مما ترک من بعد وصیت یوصی بها او دین. یہ آیت روک دیتا ہوں میں. اگر تمہاری عورتیں چھوڑ مریں تو تم کو اس میں آدھا حصہ, اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو, مال چھوڑ مرے. اگر تمہاری عورتیں مال چھوڑ مریں تو اس میں تمہارا آدھا حصہ, اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو. اور اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارا ترکے میں ایک چوتھائی حصہ, بشرطے کہ میت کی وصیت پہ تعمیل ہو چکا ہو اور اس کی قرض کی ادائیگی ہو گئی ہو. میں یہیں رک دیتا ہوں. اگر عورت کا انتقال ہو گیا उसकी औलाद नहीं है तो खाविन का हिस्सा आधा, उसकी औलाद है तो खाविन का हिस्सा एक चौथाई हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? कर्ज की अदायगी के बाद और वसीयत की जो तामील के बाद। वसीयत की कितनी हद है, कितनी वसीयत कर सकता है इंसान खुद के लिए? एक तिहाई माल की, एक तिहाई का माल वो जिसको चाहे दे दे, बाकी दो तिहाई में से सारी होता है। तो ये पहला हक हुआ। फिर अब औरतों के लिए अल्लाह ने क्या कहा? वल्लहुन्न रुबु मिम्मा तरकतुम इल्लम यकुल लकुम वलद फइन काना लकुम वलदुन फलहुन्न थुमुन मिम्मा तरकतुम मिन बादी वसीयतिन तूसून बिहा औ देन। अब आगे रुक जाते हैं। अब अल्लाह आगे फरमाता है और औरतों के लिए अगर तुम कोई माल छोड़ मरो और उनके औलाद ना हो तो उनका एक चौथाई हिस्सा है, और अगर तुम्हारे औलाद है तो उनका आठवां हिस्सा है जो तुम माल छोड़ मरो, बशर्ते कि मैयत की वसीयत पे तामील हो चुका हो और कर्ज की अदायगी हो गई हो। तो यह है, ये बात समझ में आ गई कि औरतों का हिस्सा अगर औलाद है तो एक चौथाई है मर्द की जायदाद में से, और अगर मर्द की औलाद थी तो औरत का हिस्सा एक बटा आठ, आठवां हिस्सा है, और वो भी कब है कि जब कर्ज की अदाई के बाद और उसकी वसीयत की तामील के बाद। अब आगे आया चलती है। वो इन काना रजुलई यूरस करालतन अविमरतन वो लहू अखुन अव अख्तुन फली कुल्ली वाहिद मिनहुम सुदुस फ इन कानु अक्सर मिन ज़ालिक फहुम शुरका फिस सुलुस मिन बादी वसीयति यूसा बिहा औदैन गैर मुदार वसीयत मिन अल्लाह वल्लाहु अलीमुन हलीम। अब आगे आए थे, इस पर तवज्जो दें। और अगर कोई ऐसा मर्द औरत है कि जिसके वालदेन वारिस ना हो और ना औलाद बल्कि बहन और भाई, तो उसमें से हर एक का तरके में एक छठा हिस्सा है, और वो अगर एक से ज़्यादा है तो सबका एक तिहाई में हिस्सा है, सब कुल का एक तिहाई में हिस्सा है। और ये भी हिस्से कर्ज की अदाई के बाद और मैयत की वसीयत तामील के बाद दिए जाएं, ये खुदा की तरफ से वसीयत है, और खुदा इल्म वाला और हिल्म वाला है। अब इस आयत को मैं वाजे कर देता हूँ इंशाल्लाह, दुरूद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वाला, इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे इस आयत को इंशाल्लाह। फ इन काना रजुलोई यूरसो करालतन, अगर कोई ऐसा मर्द या औरत है जिसके के कलाला है, ये कलाला क्या होता है, कलाला क्या होता है, इस पे अपन कुछ हदीस पढ़ते हैं। कलाला किसको कहते हैं? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कलाला वो है जो कि मर जाए और उसके पीछे ना तो उसके वालदेन हो ना औलाद हो, उसको कलाला कहते हैं, उसको कलाला कहते हैं। एक तो यह कलाला उसको कहते हैं, कलाला उसको भी कहते हैं कि माँ की तरफ से बहन और भाई को भी कलाला कहा जाता है। अब इसको समझाया जाएगा इंशाल्लाह, तवज्जो से सुने इंशाल्लाह, इसी मकाम पर पहुंचेंगे हम कि अगर ऐसा कोई शख्स है कि जिसके न तो वालदेन हो न औलाद हो, तो बहन और भाई को, अगर सिर्फ बहन और भाई हो तो उसको कलाला कहते हैं, तो उस कलाला में बहन को और भाई को, अगर बहन है या अकेली भाई है तो उनको तरके में से एक छठा हिस्सा मिलेगा, एक छठा हिस्सा मिलेगा।
और अगर सबके सब शरीक हों, अगर एक से ज़्यादा हो गए भाई, ना तो वाल दे ना ना औलाद है, अब सिर्फ बहन भाई बैठे हुए हैं, तो उनको क्या मिल रहा है हिस्सा? अगर एक है तो एक छठा, और एक से ज़्यादा है तो सबके सबको एक तिहाई मिलेगा, सबको 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 एक तिहाई मिलेगा। लेकिन ये जो तर्क बताया है ना, मैं तवज्जो चाहता हूँ, ये तर्क बताया ना, ये अजीब सा तर्क है। इस तर्क के अंदर क्या हुआ? बहन को भी एक एक छठा मिला, भाई को भी एक छठा मिला, दोनों को, क्योंकि ये जो कलाला है ये माँ की तरफ से है। जब माँ की तरफ से हिस्से मिलते हैं ना, क्योंकि ये औलाद माँ की तरफ की औलाद है, ये तवज्जो की बात है। माँ की तरफ की औलाद को है ना बहन और भाई को बराबर का मिलता है। बाप की तरफ से औलाद होना तो फिर कानून बदल जाता है, बाप की तरफ से भाई को बहन से दोगुना मिलेगा। तो ये कलाला खसूसन माँ की औलाद की तरफ की तरफ से बताया गया कि अगर माँ की तरफ की औलाद है तो बहन को भी 1/6 छठा ऐसा, और भाई को छठा, अगर दो है तो सबको मिला के एक तिहाई में बांट देंगे। अगर बाप की तरफ से औलाद होती तो फिर अलग है, तो इसमें भाई को दुगुना मिलता है। एक सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और ये भी कब, मिन बाद वसीयती यूसा बिहा औदेन गैर मुदार। इसमें क्या लिखा है कि गैर मुदार से क्या मतलब है? वसीयत मिन अल्लाह। इसमें क्या लिखा है कि ये सब जो दिए जाएंगे तरके कब दिए जाएंगे? जबकि मैयत की वसीयत के बाद और कर्ज की अदायगी के बाद, गैर मुदार, बगैर किसी ईजा के, बगैर किसी तकलीफ के दूसरों को। तो ये क्या मतलब है गैर मुदार से? क्या मतलब है बगैर किसी ईजा तकलीफ के? क्या मतलब? इसका मतलब ये है, मीज़ान ने समझाया है कि जो मैयत है उसको चाहिए कि ज़्यादा कर्ज लेके नहीं बैठ जाता, कि दूसरों को तकलीफ हो जाती है, उसके वारिसों को, कि उनको माल कम मिलता, तो चाहिए कि कर्ज लेके इंसान नहीं जाए। गैर मुदार से ये मतलब है। एक फूट पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मीज़ान ने बड़ी खूबसूरत बात बताई है कि अगर हम इस सारे हिस्सों को बांटे जाएं, अभी सब सब हिस्से उन्होंने बता दिए, अगर इन सब हिस्सों को बांटे जाए तो मालूम पड़ता है कि 2/3 हिस्से मर्द के हाथ में रहते हैं और 1/3 हिस्से औरत के हाथ में रहते हैं। औरत के हाथ में 1/3 इसलिए होती है, वो जज्बाती होती है, गहरी सोच नहीं रखती है। आदमी जज्बाती नहीं होता है, गहरी सोच रखता है, तो उसको मैनेजर बनाया माल पे। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा है कि जो मर्द का जो 2/3 हिस्सा है ना, उसमें आधा हिस्सा औरत का होता है, क्यों? हक तो औरत का भी होता है ना भाई, शादी करके औरत घर में आ गई तो खाने पीने माल वाल का जिम्मेदारी मर्द की होती है। तो वो हालांकि 2/3 मर्द को हिस्सा दिया अल्लाह ने, लेकिन उसमें से आधा फिर औरत ले लेती है अपने लिए। तो 1/3 तो वहां से लेके आती है जिसका खुद का है, जो खुद खर्च करेगी, ऊपर से मर्द का 2/3 में से भी आधा ले लेती है। तो दरहकीकत औरत 2/3 को इस्तेमाल करती है और मर्द सिर्फ 1/3 को इस्तेमाल करता है, लेकिन मर्द को मैनेजर बनाया 2/3 माल पे ताकि सही से माल खर्च हो। ये अल्लाह की हिकमत है। वल्लाती यातिन अल फाहिशत मिन निसाएकुम फस्तशहिदु अलैना अरबतम मिनकुम। एक बार वो पढ़ता हूँ, एक दुरुस्त पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। अब ये आगे की जो आयतें हैं, नहीं, मैं तो आगे चले, इसको रोक दें, अब ये दुरूद पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अब अल्लाह सुबहान तआला ने हिस्से वाज़े कर दिए, उसके बाद अल्लाह सुबहान तआला फरमाता, तिलका हुदूदुल्लाह व मन युतिअल्लाहु व रसूलहू युदखिलहू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहारु खालिदीन फीहा व ज़ालिका फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह सुबहान तआला कहता है ये खुदा की हदें हैं, और जो कोई खुदा और रसूल की इताअत करेगा तो खुदा उसको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, हमेशा उसमें रहेंगे। और यही बड़ी कामयाबी है। अल्लाह सुब्हान तआला कह रहा है मैंने जो हदें बताई हैं, अगर तुम इनको, अगर इनको, इनकी तुम इत्तेबा करोगे तो खुदा तुम्हें जन्नतों में दाखिल करेगा। और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। फिर अल्लाह सुब्हान तआला आगे के आदमी कहता कि वो मई यासल्ला, वो मई यासल्ला व रसूल हो व तद हदूद हो युदखिलो नारन खालिदन फीहा वलहु अजाबुन मुहीन। और कोई जो कोई खुदा और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हदों से गुजरेगा तो खुदा उसको दोजख में दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा और उसके लिए जलील करने वाला अजाब है। अल्लाह सुब्हान तआला ने बता दिया कि जब तुम हिस्से बांटो तो होशियार रहो कि अल्लाह की हदों को न तोड़ना। अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन, उसके अंदर उसके लिए सख्त अजाब है। अब आगे की दो आयतें हैं बदकारी पे, वल्लाती यातिनल फाहिशतन मिनन निसाइकुम फस्तशहदु अलैहिन्न अरबतम मिनकुम फा इन शहिदु अमसिक हुन्ना फिल बुयूति हत्ता यतफन्ना हुन्नल मौत हत्ता यतफन्ना हुन्नल मौत अव यजल्लाहु लहुन्ना सबीला। एक बार और पढ़ो क्या। अब इसके बाद क्या है, दो आयतें बदकारी के ऊपर हैं। वल्लाती यातिन फाहिशतन मिन निसाइकुम फस्तशहदु अलैहिन्ना अरबतम मिनकुम फ इन शहीदु फ अमसिक हुन्ना फिल बुयूत हत्ता यतफहुन्नल मौत अव यजल्लाहुन्न सबीला। और तुम्हारी औरतों में जो बदकारी कर बैठे उनके खिलाफ चार गाह तुम में से लाओ, और अगर वो उनके लिए शहादत देते हैं तो उनको घरों में बंद रखो यहां तक कि मौत उनका काम तमाम कर दे या खुदा उनके लिए कोई और रास्ता पैदा कर दे। अल्लाह सुब्हान तआला ने यह आयत शादीशुदा लोगों के लिए बताई है, जो शादीशुदा औरतें होती हैं या शादीशुदा औरतों के बारे में, कि अगर उन्होंने बदकारी करी है तो चार गवाह लेगा, क्या एक नहीं चार गवाह, जो कि चश्मदीद गवाह हों, जो कि बदकारी होती हुई देखें। अल्लाह सुब्हान तआला ने इतना करा कि देख कहाँ होता है, अल्लाह की करम है ना, अल्लाह का कहाँ होता है चार गवाह, कहाँ मिलता है। अल्लाह सुब्हान तआला करीम है। क्या कहा अल्लाह सुब्हान तआला ने, चार गवाह लाओ जो कि फ इन शहीद, अगर वो गवाही दे दे फमसिक हुन्ना फिल बुयूते उनको घरों में बंद कर रखो हत्ता यतफन्ना हुन्ना मौत, यहाँ तक कि मौत उनका काम करता वाप नहीं कर दे। अव जला लहु लहुन्ना सबीला, या खुदा उनके लिए कोई रास्ता पैदा ना कर दे, उनको घरों में बंद रखो जब तक वो मर नहीं जाए, ये सजा है। अव जला लहुन्ना सबीला, या खुदा उनके लिए कोई और रास्ता पैदा कर दे। तो ये आया जो आई है एक एक सवाल की तरह आया था, ठीक है, इस किया कुछ इस बात को वाज़ किया जाए कि रास्ता और कौन सा पैदा कर दे। तो बाद में रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, इरशाद क्या फरमाया रसूल अकरम ने, इसको सब मुसलमान मानते हैं कि उनको पत्थर मार के हलाक किया जाए, इतने पत्थर मारे जाएँ कि हलाक कर दिया जाए। इसके लिए कोई आयत नहीं आई थी, रसूल का हुक्म आया था बस, और सब मुसलमान मानते हैं। और वो पत्थर मारे जाते हैं, अगर कोई शादीशुदा हो और चार गवाह हो तो पत्थर मारते हैं। मुसलमानों को इस बारे में कोई शक नहीं हुआ, हालांकि इसके लिए आयत नहीं आई है, रसूल की हदीस हुक्म बन गई। तो यहाँ तो मुसलमान रसूल की हदीस को हुक्म मानता है, और जब बल्लिग की आयत आई, अली का नाम ना आया, जब रसूल अकरम ने कहा कि देखो इस आयत से मकसूद इमाम अली है, तो मुसलमान मानने को तैयार नहीं होता, हमको आयत चाहिए, अली का नाम चाहिए। अरे भाई यहाँ तो तुमने नहीं मांगी आयत, पत्थर मारना शुरू कर दिए, लेकिन जब बुग्ज़ अली है तो कहा आयत चाहिए, हमें नाम चाहिए इमाम अली अलैहिस्सलाम का। ये फ़र्क है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। दूसरी आयत इसी सिलसिले में, वल्लज़ानी यातीनिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा फ़इन ताबा व असलहा فَعَارِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا وَاللَّذَانِ يَأْتِينَ مِنْكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَعَارِضُوهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور اگر تم میں سے دو اس طرح کی حرکت کر بیٹھے ہیں تم میں سے دو اس طرح کی حرکت کر بیٹھے ہیں تو تم ان کو ایزا دو، اور اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو. بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس آیت سے کیا مراد ہے؟ یہ دو کون ہیں؟ دو وہ ہیں جو مرد و عورت ہیں جو کہ بدکاری کرتے ہیں لیکن وہ شادی شدہ نہیں ہیں، سنگلز، ان کی سزا الگ ہے. کیا اللہ نے کہا ان کے لیے؟ کیا فعاذہما، ان کو ایزا دو. فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، ان کو چھوڑ دو. تو اس آیت کی تفصیل سورہ نور کی دوسری آیت میں آئی ہے کہ ایزا کیا ہو گئی. کہا سو کوڑے مارو، سو کوڑے ان کے لیے، اللہ سبحانہ سو کوڑے کہا ہے، ان کو سو کوڑے مارو. اسی طرح قرآن کی تفسیر قرآن بنتا ہے یا قرآن کی تفسیر اہل البیت بنتے ہیں؟ ان آیات سے ثابت ہے، یا تو قرآن بنے گا یا اہل البیت بنیں گے. ایک درود پڑھ دی جائے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ توبہ کی، اللہ سبحانہ نے بات کرنا شروع کری تو اللہ سبحانہ آگے بات کہتا انما توبہ تو اللہ للذین یعلمون سوء بجہالتی ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. خدا بس توبہ، خدا کے نزدیک توبہ انہی کی ہے جو کہ نادانی سے یا جہالت سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں اور جلد توبہ کر لیتے ہیں. تو خدا فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو خدا ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اور خدا علم والا اور حکمت والا ہے. اس آیت کو اپن دھیرے دھیرے پڑھیں گے انشاءاللہ. کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ توبہ سے اسی قبول کی جاتی ہے جو کہ نادانی میں، جہالت میں گناہ کرتا ہے. جہالت میں انما التوبہ تو علی اللہ للذین یعنی سوء بجہالتی، سو کا ہے، ایک برائی کا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے پتا نہیں کہا یہ بی جہالتی. ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، کہا کہ خدا کے نزدیک توبہ اسی قبول ہوتی ہے جو کہ جہالت میں نادانی میں توبہ کر کے، گناہ کر کے، بری حرکت کر کے جلد توبہ کر لیتا ہے، جلد جلد توبہ کر لیتا ہے، اس کی خدا توبہ قبول کرتا ہے. وہ کان اللہ علیما حکیما، اور خدا علم والا اور حکمت والا ہے. تو اس آیت کی تفصیل میزان نے دوسری آیت سے بیان کری ہے، جس کی بعد والی آیت وہ آخری آیت ہے. پہلے میں دوسری آیت پڑھ دیتا ہوں، پھر اس آیت پہ واپس آئیں گے. وہ لیست التوبۃ للذین یعلمون سید حتی اذا حضر احدکم الموت قال انی تبت الان وللذین یموت وهم کفار اولئک آتنا لهم عذابا علیما. اور خدا ہرگز ان کی توبہ قبول نہ کرتا ہے جو کہ برے عمل کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں کسی کی موت آیا تو کہتا اب میں توبہ کرتا ہوں، یا وہ جو کفر کی حالت میں مرے ان کے لیے خدا نے تکلیف دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ دوسری آیت ہے. اب دونوں آیتیں دیکھ لیتے ہیں. ایک آیت میں پہلے کہا کہ اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو کہ نادانی میں بری حرکت کرے، جلد توبہ کر لے، اس کی توبہ قبول ہے. دوسرے میں کیا کہا ہے؟ خدا ان کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے جو کہ گناہ کرے چلے جاتا ہے یہاں تک کہ موت نہیں آ جائے، تب کہتا کہ میں توبہ کرتا ہوں، یا کفر کی حالت میں مرے ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. اب اس سے پہلی آیت واضح ہو گئی کہ جلد توبہ کون سی ہوتی ہے. جلد توبہ وہ ہوتی ہے جو موت کے پہلے ہو جائے، دوسری آیت سے واضح ہے، کیونکہ موت تک جب موت آ جاتی ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. تو جلد توبہ کس کو کہا میزان نے؟ موت سے پہلے جو ساری توبہ ہیں وہ جلد توبہ ہیں. نادانی کس کو کہا ہے؟ بی جہالت ہی کیا ہوتا ہے؟ بی جہالت کو واضح کرا میزان ہے. ہم کو علم ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن جب جذبات آتے ہیں نا तो वो इल्म हल्का पड़ने लगता है दिमाग में, हम उस इल्म से लाइल हो जाते हैं कि भाई गिबत नहीं करी जाए, लेकिन जब जज्बात ना गए तो मालूम है, लेकिन हम उससे जाहिल हो जाते हैं। इसको जहालत कहते हैं कि इल्म होते हैं भी हम जाहिल हो जाते हैं अपने जज्बात में, इसको कहते हैं बी जहालती इसको कहते हैं बी जहालत। सुम यतूबू मिन करीबिन, फिर जल्द तोबा कर ले, मतलब मौत के पहले तोबा कर ले, ये मतलब है उसकी तोबा अल्लाह कबूल करता है। तो मीज़ा ने इसको वाजे करा है कि जल तोबा मतलब मौत के पहले की तोबा। अच्छा, तोबा को भी दो तरह से मीज़ा ने कहा कि जब बंदा एक बार तोबा किसको कहते हैं, रुजू करने कहते हैं, रुजू करने, जब बंदा एक बार तोबा करता तो अल्लाह दो बार रुजू करता, बंदा एक बार रुजू करता अल्लाह दो बार रुजू करता, बंदा तोबा कर रुजू करता लेकिन उससे पहले अल्लाह तोबा की हिदायत देता है, वो खुदा की पहला रुजू है बंदे की तरफ, के बंदे को हिदायत देता है कि तू इस बात की तोबा कर। सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू, ये आयत है 118वीं सूरह तोबा की, कि खुदा ने उनकी तोबा को कबूल करा ताकि वो तोबा करें। पहले खुदा तोबा कबूल करता है फिर हिदायत देता है कि अब तू मेरे से तोबा कर। सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू, ये है कि मीज़ान ने कहा कि पहले खुदा रुजू होता है बंदे, तू तोबा कर इस गुनाह की, फिर बंदा तोबा करता है तो अल्लाह फिर कहता मैंने तुझे माफ करा। इतना करीम परवरदिगार है। तो इस तोबा की मंजिल क्या है कि मौत से पहले तक आप तोबा कर लो, अल्लाह माफ करता जाता है। सरकार ने फरमाया, सरकार की हदीस लंबी है, कि खुदा मौत के एक साल पहले तक तोबा कबूल करता है, पहले सरकार ने फरमाया, फिर उसके बाद करना ही नहीं, एक महीने पहले तक भी खुदा माफ कर देता है, सरकार ने फरमाया। फिर कहा ना ये भी बहुत लंबा है, एक दिन पहले भी माफ कर देता है। फिर सरकार ने कहा ना ये भी लंबा है, एक घंटे पहले माफ कर देता अल्लाह। ओह रेमस अल्लाह पलटेगा। फिर सरकार फरमाए नहीं, एक घंटा ही बहुत लंबा है, उस जब यहां तक वो आ जाए खुदा माफ कर देता है। इतना करीम परवरदिगार है। छठे इमाम फरमाते हैं दरवाजे जब बंद होते हैं तौबा के, जबकि इंसान बरज़ख को देखना शुरू कर देता है तब दरवाजे बंद होते हैं, तब जाके दरवाजे बंद, जब बरज़ख देखना शुरू हो जाता है तब जाके दरवाजे अल्लाह बंद करता है। शैतान ने अल्लाह जब आदम को खल करा तो शैतान ने आदम के अंदर एक खोखली जगह दिखी तो वहाँ जाके बैठ गया और कहा कि अल्लाह सुब्हान तआला मैं इस जगह से ना निकलूंगा जब तक इसकी रूह कब्ज़ नहीं हो जाएगी, यहीं बैठा दूंगा मैं। तो खुदा ने फरमाया कि मेरी इज्जत की कसम कि मैं और इसकी तौबा के बीच में ना आऊँगा जब तक इसकी रूह यहाँ रहेगी, मैं उसकी तौबा कबूल करता रहूँगा, अगर तू भी बैठेगा तो मैं भी कबूल करता रहूँगा इसकी तौबा मेरे बंदे की जब तक इसकी रूह इसमें। ये करीम परवरदिगार है। पांच इमाम फरमाते हैं कि तौबा के लिए काफी यह है कि आप तौबा करो उससे आपको अफसोस पैदा हो जाए। ये मीज़ान पढ़ रहा हूं मैं, अफसोस काफी है, ये मीज़ान पढ़ रहा हूं, ये मीज़ान ने जो ये रेफरेंस दिए अलकाफी के दिए, अफसोस उसका कफारा है कि अफसोस पैदा हो। तो ये आगे मीज़ान में पांचवें इमाम से कि उनका सहाबी सवाल किया जाता, सहाबी का नाम था मोहम्मद इब्ने मुस्लिम, कहा कि ये कब तक सिलसिला चलता है कि अफसोस हो, कहा कि जब भी करे अल्लाह माफ करता चला जाएगा, फिर गुनाह करेगा फिर माफ करेगा अल्लाह। फिर मौलाना ने आखिरी में फरमाया क्या, कहा कि ये दरवाज़ा खुला रहता है, इससे होशियार रहो कि मोमिनीन खुदा की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाए, मोमिन खुदा की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाए। अच्छा, तोबा में क्या है कि दो तरह की तोबा, एक तो तोबा होती है गुनाहों से और एक तोबा होती है कुफ्र से, अल्लाह ने उसको भी माफ़ करा गया, कोई कुफ्र करता हो वो भी तोबा कर ले, वो मोमिन हो जाए तो उसके भी गुनाह माफ़ है। अल्लाह सुब्हान इसी ने कहा कि कुफ्र की हालत में या तो सारी उम्र तोबा करे जब तक कि दूसरी दुनिया ने देखना शुरू कर दे, या कुफ्र में मरे। ऐसे भी लोग होते हैं, खुदा उससे हमको पनाह में रखे कि हम जिंदगी भर तो ईमान में रहे और मौत के वक्त काफिर हो गए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अल्लाह उससे बचाए। हाय हाय, तोबा देखना हो तो करबला में देखें, हुर की तोबा इसको कहते हैं, सच्ची तोबा। हाय हुर, वो हुर वो था कि जो 1000 के लश्कर के साथ मौला को करबला लेके आया, मौला को भूखा और प्यासा रखा, जब आंसू की शब आई, बच्चे अलतश करने लगे, उसके जमीन उसको दुत्कारा है, हाय हूर तूने क्या कर दिया इन बच्चों को, इस दश में प्यासा छोड़ दिया, हूर रात भर टहल रहा था, बड़ा शुजा था, उसके साथ वाले कहने लगे ए हूर तू इतना शुजा है क्या, खौफ में डर रहा है कल जंग होगी, कहा कि तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, मैं अपने आप को जन्नत और दोजख के बीच में देख रहा हूँ। उसने तोबा करी, सुबह के वक्त अपने हाथों को बांधा और मौला के सामने हाजिर हुआ अपने गुलाम के साथ, वो कहने लगा मौला मुझे माफ करे, मैं तोबा करता हूँ, ये तोबा थी हुर की। वो गया, मौला ने इजाजत दी, शहीद हुआ। मौला ने कहा ए हुर तू दुनिया में भी आजाद और आखिरत में भी आजाद।